यह प्रवचन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया दिनांक 2/6/2013 रविवार स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 33 के ऊपर। हरे कृष्णा।
लगता है तुम भूखे हो, दूध पी लो। और उस बालक ने कहा कि बड़ा भारी हूँ प्रभावित हूँ आनंद जनपुरी की सेवा से और मैं आनंद जनपुरी को एक खास सेवा देना चाहता हूँ कि मुझे इस स्थान में दबा दिया था
उपस्थित हैं
और इस आचार विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो फिर आप ठीक उसे समझ गए। भगवान अपने आप को आचार विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए केवल पत्थर की मूर्ति है, और ये सोचना चाहिए क्या यहाँ स्वयं भगवान है। और भगवान जब प्रकट होते हैं आचार विग्रह, उनकी स्थापना की जाती है शास्त्र की विधियों के अनुसार। ये नहीं कि आप जयपुर से जाकर राधा कृष्ण की मूर्तियां ले आओ, और उनकी स्थापना होनी चाहिए शास्त्र की विधियों के अनुसार, और उनकी सेवा होनी चाहिए शास्त्र पर आधारित। जैसे कि इस्कॉन संस्था में जो सेवा की जाती है हरि भक्ति विलास ग्रंथ के आधार पर है, 100% शास्त्र के आधार पर है। ये नहीं कि एक दिन मंगल आरती होती है 4:30 बजे, एक दिन 6 बजे, एक दिन 7 बजे। इस समय एक मंगल बता, मैंने पूछा मंगल आरती कब होती है, कहने लगे जब स्वामी के पुजारी जी उठते हैं। भगवान के पास की जानी चाहिए बिल्कुल शास्त्र पर। तो माता ने थोड़ी चले कहां से, गोवर्धन से कहां तक, और वहां पहुंचे यमुना में। यमुना में जब पहुंचे तो वहां के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ जी का, और ये जो मंदिर है ऐतिहासिक है, और इस मंदिर में जो वो भगवान को चढ़ाया जाता है बड़ा टेस्टी और बड़ा प्रसिद्ध था। तो महाराज पूरी जब उस मंदिर में पहुंचे तो उनके मन में भाव उठा कि मैं यहाँ से देखूं कि लोग भगवान की सेवा कैसे करते हैं। तो मैं दौड़कर अपने गोपाल के लिए भी इसी प्रकार से सेवा कर सकूँ। जैसे भौतिक क्षेत्र में आप एक दूसरे से सीखते हो, आप जब देखते हो किसी देश के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप वो सीखने का प्रयास करते हो। जितने विद्यार्थी भारत से विदेश आते हैं पढ़ने के लिए तो उससे वहाँ शिक्षा अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो अध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के ज्ञान का लाभ उठाते हैं। तो बाद में पूरी ने यह सोचा कि मुझे देखने दो यहाँ भगवान के लिए क्या भोग बनता है। जैसे आपके इस मंदिर में पहले आपकी होती 4:30 बजे और दिन में 7 आरतियाँ होती हैं, भगवान के लिए भोग बनता है। क्योंकि जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं वो सोच कहते हैं देखो इन मूर्ख वैष्णवों को, कहते हैं भगवान ने खा लिया, तो थाली तो वैसे की वैसी है। आप जब खाते हो तो आपकी थाली खाली हो जाती है, ठीक है, और भगवान जब खाते हैं उनकी थाली भरी हुई रहती है। कैसे, कौन कहेगा? क्योंकि भगवान खाते हैं कैसे, नेत्रों से और कानों से। नेत्रों से देखते हैं भक्त क्या बना रहा, कानों से आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो माधव थोड़ी वहां के पुजारियों से पूछ रहे थे अमर भगवान में क्या भोग चढ़ाते हो, मंगल आरती में क्या भोग, श्याम के समय क्या भोग, दोपहर के समय क्या भोग। और मेरे मन में ये भाव था कि मैं लौटकर अपने विचार के लिए इसी प्रकार का भोग बना। तो जब भगवान प्रकट होते हैं आज विचार के रूप में, हम सबकी क्या भावना होनी चाहिए कि हम की सेवा में जुड़े। भगवान की सेवा अनेक गुण की जा सकती है। जो ब्राह्मण दीक्षित हैं भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है या दीक्षित नहीं है भगवान के लिए खुशी के लिए कीर्तन में उपस्थित हो सकते हैं, भगवान के लिए भेंट ला सकते हैं। जैसे यजमानपुरी में जब गोपाल विहार की स्थापना की तो ब्रज के सारे खाना जुड़ गए इस सेवा में। किसने गाय भी दान है, किसने खेती भी दान है, किसने पिछौलिया दान दान है। तो महावेन्द्रपुरी के मन में ये भावना थी कि अगर मुझे जो खीर अर्पण की जाती है भगवान को, जो खीर भगवान में बनाई जाती थी जाती है इस मंदिर में कारण को बिना इसे इसका एक और नाम है अमृत के लिए, अमृत जो कि स्वर्ग में बनता है, इतना अच्छा स्वाद है। महानंदपुरी के मन में एक भावना हुई कि अगर एक खीर चखने का हमें मौका मिल जाए लौटकर मेरे भगवान के लिए भी ऐसी खीर बनाऊं। पर ये भावना प्रकट कब हुई, तब भी भगवान को भोग करना। और सिद्धांत ये है कि जब आप भोग बना रहे हो तो भाव क्या होना चाहिए, तो भगवान की खुशी के समझा है। जब भगवान खाने तो खाली निकाल कर ले आए जब हम चल सकते हैं खा सकते हैं। तो माता पूरी शर्मिंदा हो गए क्योंकि हमें यह भावना प्रकट हुई कि भोग वो चखे जब भगवान भोग लग रहा था और मानन पूरी चखे बिना बंधन छोड़कर झाड़ में चले गए अपना भजन करने के लिए। मानन पूरी 24 घंटे भगवान का भजन करते रहे। और भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है, भगवान ने क्या किया, भगवान ने रोज शाम को इस प्रसिद्ध मंदिर में खीर भगवान को भोग लगाई जाती थी। भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा कर पुजारी को सपने में कहा कि मैंने ये खीर का प्याला चुराया है मेरे प्रसिद्ध भक्त आनंदपुरी के लिए, तुम इसे इन भक्त को इस स्थान में प्राप्त करोगे और पुजारी ने कहा भगवान ने खीर का प्याला चुराया है किसी भक्त के लिए असंभव। ये कैसे संभव हो सकता है, भगवान कैसे चुरा सकते हैं। तो खैर पुजारा भगवान को जगाया तो क्या देखो सचमुच खीर का प्याला था और पुजारी ये सोचने लगे कौन ये भाग्यशाली व्यक्ति मानंदपुरी जिसकी खुशी के लिए भगवान ने क्या किया खीर का प्याला। और मानंदपुरी खोलने पुजारी बाजार में गए मानंदपुरी को खोलने के लिए और ये मानंदपुरी मिले तो उन्होंने कहा मैंने सौभाग्यशाली को कि तुम्हारी खुशी के भगवान ने क्या किया खीर का प्याला। मानंदपुरी बड़े प्रसन्न हुए और आगे जन्मपुरी गए, यमुना से जल्दी निकल गए कि पूरे यमुना में खबर फैल गई कि शहर में ऐसा कोई संत है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। और जो असली संत हैं वो किसी प्रकार का आदर नहीं चाहते, किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं चाहते। अगर आप हमारा वैष्णव सिद्धांत को पढ़ो तो आप देखोगे कि कई प्रसिद्ध महात्मा हैं जिन्होंने कहा कि हमारा नाम ही मत ले। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं कृष्णदास कविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चैतन्य नाम का ग्रंथ दिया। तो कृष्णदास कविराज ने कहा है कि अगर तुम मेरा नाम ही लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा नाम ही मत ले। पर हमारी क्या स्थिति है कि अगर कोई हमारा नाम नहीं ले तो हमें गुस्सा आता है। गलती से नाम रह जाए तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है शिक्षाशास्त्र के तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य शिष्य ने अनेक ग्रंथ में दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु केवल हमें 8 श्लोक दे गए, श्लोकों का उच्चारण किया जाता है जिन्हें हम क्या सामने शिक्षा सके। तीसरे श्लोक में क्या है महाप्रभु कह रहे हैं, अगर आप सदा हरि का नाम लेना चाहते हो तो हमारे विनम्रता का भाव होना चाहिए, अत्यंत सहनशील होना चाहिए और अपने आप को प्रतीक मानना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए बिना किसी आदर की उम्मीद रखे। तो पूरे शहर में ये सूचना फैल रही थी कि इस शहर में एक मदनपुरी नाम का भक्त है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर प्यार चुराया था और छुपाया। तो यहाँ भी मदनपुरी जाते थे, खीरों जाती थी, उनका पीछा उनके पीछे लोग इतने लोग आए थे तो मदनपुरी को अच्छा नहीं लगा और मदनपुरी आगे गए जगनपुरी में गोवर्धन निकले थे किस लिए क्या किस लिए गोवर्धनपुरी गए जगन्नाथपुरी, जहाँ के अधिकारियों ने उन्हें सहयोग दिया, एक भक्त दिया उन्हें सहयोग देने के लिए, उन्हें चंदन उठाने के लिए, वो चंदन और कैंपर लेकर मानपुरी लौट गए थे कहाँ गोवर्धन जगन्नाथपुरी से। रास्ते में उड़के कहा यमुना में और जब यमुना में रुके एक रात के लिए यमुना रास्ते में था तो मदनपुरी को फिर से सपना है कहा तो अभी ये नहीं सोचना कि मदनपुरी को भगवान आदेश करते सपने में अभी आदेश स्वीकार करके सपने में महान संतों ने कहा है कि सपने में भगवान आदेश देते किसे हमें गुरु साधु के निर्देश के अनुसार चलने तैयार करने। तो मदनपुरी का फिर से सपना है जिसमें भगवान ने कहा कि मैं बड़ा भारी हूँ, तुमने इतनी बड़ी यात्रा उठाई सिर्फ मेरी खुशी के लिए। भगवान ने मदनपुरी की परीक्षा ली थी, भगवान ने उन्हें ऐसा कार्य दिया जो कि हर व्यक्ति नहीं निभा सकता, क्या कहा चंदन लाओ मेरे लिए। तो उसी प्रकार भगवान हम सब के लिए परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा माया लेती है, माया में प्रभावित करने का प्रयास करती है, भक्ति की क्या आवश्यकता क्या जल्दी देखो सारी दुनिया को सब छोड़े। तो भगवान भी मंत्रों की परीक्षा करते हैं, कठिन स्थिति में डालते हैं जैसे कि पिछले हफ्ते आपने नरसिंह चतुर्दशी मानी थी, तो नरसिंह चतुर्दशी के दौरान प्रहलाद महाराज की कथा भी आपने पढ़ी सुनी थी। तो और प्रहलाद महाराज की कथा में हम क्या देख रहे हो, प्रहलाद को अनेक कठिन स्थितियों में डाला भगवान ने, अनेक आप उनकी तुलना भी कर सकते, पर हर स्थिति में प्रहलाद जुड़े हुए थे भगवान की सेवा में, भगवान के आदेश में, और क्योंकि उनका स्मरण था सदा भगवान के देश के रोशन करे हमेशा उनकी सुरक्षा की स्थिति पर भगवान की। भगवान क्या कहते हैं, कौन क्या प्रतिदानी ही ने हमें भाग्य प्रदेश की, हे अर्जुन तुम सारे विश्व को सूचना दो क्या मेरा मतलब तो भगवान ने सपने में वानरपुरी से कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से तुमने इतनी कठिनाई उठाई मेरे लिए चंदन लाने के लिए पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं क्या देश कौन दे रहे हैं गोपाल विग्रह गोपाल विग्रह उनके विग्रह है इनकी खुशी के लिए वो चंदन लेने निकले उन्होंने आदेश दिया था सपने में तो निकले थे चंदन लाने के लिए और गोपीनाथ विग्रह कौन से हैं योगी रघुनाथ में से तो भगवान गोपाल ने कहा कि मैं बड़ा भारी हूँ कि मेरी खुशी के लिए मेरे लिए बड़ी यात्रा की पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं तो मैं इसी चंदन का उपयोग कर रहा हूँ गोपीनाथ की सेवा में तो जब ये सूचना महानंद गुरु ने अगले दिन सुबह गोपीनाथ के पुजारी को दी
केस में लड़ा तो केस में हार गए तो भट्ट पंजाब
बेचारे वहां दुखी गए, अब क्या कहना है। हमारे भक्तों ने प्रयास करके नया स्थान प्राप्त किया। आप गए हो, आपके से कितने भक्त पंजाबी बाग के मंदिर गए हो दर्शन में? बस मैंने तो सोचा था सब हाथ उठा करके गए हम उस मंदिर में। बड़े प्रसिद्ध कृष्णा बालराम की विग्रह है, आप लोग यहाँ पे कृष्ण बालराम के दर्शन में बता हो जाते हैं। यहाँ भी आए और अभी भगवान की कृपा से वो स्थान प्राप्त होगा पंजाबी बाग। फिर प्रचार बढ़ते गया, भक्तों का उत्साह बढ़ते गया, फिर नोएडा में मंदिर बनना शुरू हुआ। फिर आस्ते आस्ते फरीदाबाद में स्थान प्राप्त हुआ और भागलगंज में, गाजियाबाद में, पंजीर छतरपुर आपने छतरपुर के अंदर देखा है, आपने से कितने बार छतरपुर के केंद्र में गए? मेरे ख्याल से इस मंदिर में हमें एक योजना बनाने के लिए भक्तों को सारे मंदिर में ले जैसे हमारे यहाँ बसें आती हैं दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों का दर्शन। तो मेरे ख्याल से हमारे जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो, आप सब जुड़े हुए इस्कॉन के साथ, तो कम से कम इस्कॉन के जो केंद्र हैं दिल्ली में वहाँ तो आपको जाना चाहिए। योजना बनाए किया जाता है। जब श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो प्रभुपाद जी को पता था कि एक दिन आएगा जब अधिक वर्ष घर में बैठकर सेवा करेंगे। जब इस्कॉन की शुरुआत हुई थी सारे भक्त मंदिर में रहते थे, बड़े बड़े बाहर रहता था, हम सोचते थे वो महाराज विचार बदले भक्त जुड़ते गए। आज ग्लोबली देखा जाए 90% इस्कॉन के भक्त बाहर रहते हैं और 5-10% तो सभापति ने रविवार के कार्यक्रम की स्थापना की जिसमें खास करके जो घरों में रहते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेज में रहते हैं, उन सबको मौका मिले कि वो मंदिर आए। क्षेत्र ने महाप्रभु जी ने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। महाप्रभु ने हम सबको आदेश दिया क्या, पहला आदेश था हरे कृष्ण मंत्र का, दूसरा आदेश क्या था क्या भागवतम और गीता कभी मित्र रूप से रोज करने, इसलिए इसका भी केंद्र में सुबह के समय भागवत का अध्ययन किया जाता है और शाम के समय साधु संगत, साधु संगत, साधु संगत सर्वशास्त्र का लाभ मात्र साधु संगत सर्वशास्त्र। भक्तों की संगत की बहुत आवश्यकता है। नारद मुनि ने रुक्मिणी से कहा भागवतम 14 स्कंद में कि हमें 3 प्रकार की संगत प्राप्त हो सकती है। एक है उनकी जो भक्ति नाम से ज्यादा आगे है, एक है काम के बराबर है, और तीसरा है कि भक्ति में आपसे काम क्या है। तो जब आप उन्हें मिलो जिनका भक्ति में आपसे ज्यादा समर्पण है, ज्यादा ज्ञान है, तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संगत द्वारा हमें ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसके उपयोग से आप जीवन को सुधार सकते। जब आप अपने बराबर के भक्त को मिलो तो क्या भाव होना चाहिए? मित्रता का भाव, मिलकर हनुमान की सेवा करनी चाहिए। जब आप इनसे मिलो जिनका भक्ति में आपका काम ज्ञान है तो क्या भाव होना चाहिए? दया का भाव, प्रजा। जैसे कि हम भक्तों ने अनुभव किया है क्या भी दिल्ली में जो हमारी दिया सब भक्तियाँ जैसे उन्हें भी प्रचार हो सा हर साल हम लोग यात्रा का वितरण करते हैं और की सेवा में आप भी जुड़ते हो ना। आप मेरे कितने लोग जुड़े थे पिछले साल मैराथन में और जो नहीं जुड़े थे ये सब जुड़ोगे? तो ये है दया की भाव। प्रचार क्यों करते हैं? भक्तों की इच्छा रहती है कि सबको सुखी बनाया जाए। तो भक्तों का भाव रहता है सब सुखी बने, पर वो जानते हैं कि अगर असली सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? परम भगवान के शरण में होना चाहिए। जैसे कि अधिक श्लोक में हमको पढ़कर सुनाने लगा था क्योंकि भगवान के 14 स्कंद में है। तो इस 14 स्कंद में पितृ महाराज का उपदेश हमें प्राप्त होता है। पितृ महाराज ने जो शिक्षा दी राजा को, प्राचीन समय में जो नेता होते थे वो अपनी जिम्मेदारी मानते थे क्या समाज को आध्यात्मिक ज्ञान देना। तो पितृ महाराज ने अपनी प्रजा को क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा तुम सब अपने मन वाणी बुद्धि देह द्वारा भगवान की सेवा करो। ओम ज्ञान द्वारा भगवान की सेवा कैसे करोगे? गीता में भी आप पढ़ते हो, भगवान कहते हैं मन मन भाव मन भक्तो मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मुझे प्रणाम करो। पर अगर तुम यही सब करोगे तो भगवान क्या कहते हैं, इसके बदले में क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? बिना धाम बिना शंका के मेरे धाम में लौटोगे तो आप में से कितने भक्त की इच्छा है भगवान के धाम को लौटने की? सब पर कभी कभी हम ये उम्मीद करते हैं कि हम भगवान के धाम में लौटेंगे तो हमें कोई त्याग नहीं पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्मान पड़े कहते हैं मां में कम हम कम सूर्य पास पहुंचे सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण पे आओगे तो ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान ये तो नहीं कह दे जो करना है करो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान ने कहा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो, फिर मेरा शंका के मेरे सामने लौटे। तो हम पीठ महाराज भगवान के शक्कर विष्णा बता रहे भगवान के अवतारों के छह प्रसिद्ध विभाग हैं। एक है पुरुष अवतार, एक है गुना अवतार, एक है लीला अवतार, एक है मनमंत्र अवतार, एक है युग अवतार और छठा है विष्णुनाथ भगवान के शक्तिवेश अवतार और वो पूरी प्रजा को असली खुशी का करने का कहने अपने मन का उपयोग करो किस लिए, भगवान का चिंतन स्मरण करने के। तो मन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, अगर आप मन को वश में कर लो तो हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। और अगर मन पर वश नहीं किया हो तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट है। प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते थे गोस्वामियों का, जो वृंदावन के गोस्वामी हैं, गोस्वामी का अर्थ क्या, जिसका मन और इंद्रियों पर पूरा वश हो। तो वृंदावन के छह प्रसिद्ध गोस्वामी हैं जिनका हम आदर करते हैं, जिनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। पृथ्वी में महाप्रभु जी के बड़े प्रसिद्ध भक्त है और खास करके रूप गोस्वामी, रत्नाथ गोस्वामी और रत्नादास गोस्वामी, जिनका समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। तो सब कुछ त्याग कर वृंदावन में गए जहाँ के वो मंत्र करके जीवे। तो रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी, उस समय बड़े प्रसिद्ध राजा थे नवाब हुसैन शाह, जिसके राज्य में छापन, जिसके राज्य में लगभग प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के समान जिम्मेदारी कर रहे थे। इनकी रुचि नहीं थी, इन्हें जबरदस्ती मुसलमान राजा ने सेवा में जोड़ा था। उस समय प्रजा की लगभग हिंदू छापूसी करके उसे इंशा राजा बन गए। पहले उस प्रांत के राजा के बड़े और थे सूरी रॉय, छापूसी करके वो नाम हमेशा बड़े जमींदार बन गए। तो रूप गोस्वामी लगभग प्रधानमंत्री जैसे कार्य कर रहे थे, उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि थी क्षेत्र महाप्रभु जी के साथ यात्रा करने की। महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उन स्थान को खोजा जहाँ की पर भगवान ने अपने देवी लीला प्रकट की थी। और जब गुरु गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी उनके पास इतना धन था कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। सोने के सिक्कों की पूरी नाव भर गई थी और उन्होंने 50% बांटा किसे? ब्राह्मण को। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के चौथे पुत्र थे, पर इन्होंने हर प्रकार का पौधे शुरू किया था। वृंदावन में आए सादा जीवन बिताने के लिए, तो मनस्थिति में संतोष थे। क्यों? क्योंकि मन जुड़ा हुआ था कहाँ? भगवान की सेवा में। आप शब्द में पढ़ते हो कि जब वामन देव जी आए बाली महाराज के आंगन में यज्ञ में, तो बाली महाराज ने वामन देव ब्राह्मण थे स्वागत करके पूछा, मैंने भाई क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन देव जी ने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हो मुझे तो इतना साथ दे जाओगे मैं 3 कदम रख सकता। व्यक्ति के पास जाकर इतनी छोटी भीख मांगते हैं, कुछ और मांगो पूरी पृथ्वी पूरा लोग अपने और भी दे देता हूं। तो वामदेव ने कहा कि अगर किसी ने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया हो तो सारे विश्व का धन भी लोगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने मान और इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो हर स्थिति में संतुष्ट है। तो इसलिए आप शास्त्र में पढ़ते हो बार बार इस विषय पर चर्चा की जाती है कि मन को अपना मित्र बनाओ। मन मित्र जब माना जाता है जब मन में आध्यात्मिक भाव हो, और मन शत्रु जब माना जाता है जब मन में भौतिक। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब आपका मन शास्त्र की शिक्षा से जुदा जा रहा है, जब आपके मन में पॉजिटिव विचार बढ़ते जा रहे हैं, तो स्थिति में मन क्या है? आपका शत्रु। जब आपके मन में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो रहा है, जब आपके मन में सेवा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय ये मन आपका मन है। और इस व्यक्ति ने मन को उपयोग करो भगवान की सेवा में। वाणी कहते हैं वाणी, वाणी का उपयोग करो किसके? भगवान की सेवा में। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए वाणी का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप जीव का उपयोग करो भगवान के नामों के उच्चारण के लिए और जीव का उपयोग करो केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो फिर ये है जीव का उपयोग। तो वाणी का भी हमें उपयोग करना चाहिए भगवान के गुणगान के लिए। कली काली नामारूपम कृष्ण होगा, कलियुग में भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य नामों के द्वारा। तो बहुत ही बड़े व्यक्ति ये समझ नहीं सकते कैसे संभव है कि आप ये हरे कृष्ण के भक्त एक ही नाम का उच्चारण दिन रात करते हैं। आखिर लोग पूछते हैं खास करके विदेश में, तो कहते हैं आर यू ब्रेन वॉश? एक ही नाम का जाप करके दिन रात करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने नामों में अपनी पूरी शक्ति डाल दी। तो इसलिए कहा गया है कभी कभी दोष ही दोष है, एक गुण है इस कभी हमें वह भगवान के नाम। तो वाणी का उपयोग करना चाहिए कि इसलिए भगवान के नामों का उच्चारण साथ में कृष्ण कथा, कृष्ण कथा का अर्थ है कथा जिसका भगवान से संबंध हो, शास्त्र पर आधारित हो। और वो दीप का उपयोग करना चाहिए और किसके, और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा लेंगे। कितने भक्त हो जो केवल कृष्ण प्रसाद ही खाते हो और कुछ नहीं, सब नहीं। 30-40% तो आज सबका ये निर्णय होना चाहिए खाएंगे तो क्या खाएंगे। कृष्ण प्रसाद खाने से मन बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है। तो आज सबका ये नियम होना चाहिए खाएंगे तो कृष्ण प्रसाद। तो पहला कार्य क्या है वाणी का, भगवान के नाम का उच्चारण। तो आप ऐसे कितने भक्त हो इस सभा में जो 16 माह का जाप रोज करते हो। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन संस्था की स्थापना की तब इस्कॉन संस्था का पहला केंद्र खुला था दिया में, उस समय केवल 10-15 अमेरिकन शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी ने संतों का आदेश दिया 64 राउंड जरूरी थे, तब 14 मना कर दो। भक्तों ने प्रयास किया पर 14 मना कोई नहीं कर पाया। तो कई दिन बीत गए कोई नहीं कर पाया 14 मना। तो प्रॉपर से कहने लगे स्वामी जी वी कान चैंट 64 राउंड कोई देर को। तो प्रॉपर ने ओके चैंट करी 2 राउंड 32 माह उन्होंने प्रयास किया तो कर नहीं पाए। फिर प्रभुपाद जी ने कहा 16 राउंड से नो दैट। तो 16 माह जाप की जिम्मेदारी हमें किसने दी है। तो अगर हम 16 माह का जाप करेंगे रोज तो उसमें कितना समय लगता है। आप 16 माह करते हो, हाँ 12 करते हो, अच्छा 1 घंटा 50 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा। अगर आप 2-2.5 घंटे भी दो जाप करने के लिए बाकी कितना समय बच गया आपके लिए। कई बार हम सोचते हैं समय नहीं है, 16 बार के बहुत समय लग जाता। कृष्णा कबीरा जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है। तो सरल कार्य उनकी कृपा के बिना प्रयास कीजिए 16 माह करने के लिए। जब आपकी भौतिक समृद्धि बढ़ती है आप खुश होते हो या दुखी होते हो, तो भौतिक संपत्ति साथ जाएगी नहीं, और आध्यात्मिक संपत्ति। तो सब कहीं नियम होना चाहिए कि हम 16 माह करेंगे। तो आप तैयार हो प्रयास करने के लिए। तो आपने कितने भक्तों की सभा में जो आज 16 माह नहीं कर रहे और कल से 16 माह जरूर करेंगे। सब कीजिए। हम गीता में भगवान कह रहे हैं जब वो प्रयास करें मुझे समझने के लिए उसमें कुछ कष्ट भी हो उसे मैं दूर करता हूँ। तो वाणी द्वारा प्यारा कर्तव्य क्या है, दूसरा दूसरा चरित्र क्या है वाणी पर कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा की चर्चा जब कर सकोगे जब भगवान के ग्रंथों का अध्ययन भी करो द्रौपदी ने बड़े बड़ी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद का अनुवाद किया जिनका आगे अनुवाद सत्तर से अधिक भाषा में हो गया उर्दू भाषा में भी हमारे लिखाएंगे पूरे ग्रंथों में तो इन ग्रंथों को पढ़ो आप में से कितने भक्तों जो भगवत गीता करोड़ों में पढ़ते हो और कितने भक्तों श्रीमान भागवतम पढ़ते हो आजकल आप जानते हो इंटरनेट के द्वारा आप भागवतम घर बैठे बैठे सुन सकते हो इसका लाभ भी है और नुकसान भी है लाभ ये है कि आप घर बैठे बैठे भागवतम सुन सकते हो नुकसान ये है आप कहोगे अरे मंदिर जाने की क्या जरूरत तो प्रयास महाप्रभु का नहीं था रोज गीता पढ़ो रोज भागवतम नहीं पढ़ सकते और वाणी द्वारा तीसरा कर्तव्य क्या है कृष्ण प्रचार जो प्रचार भोग नहीं लगाते उन्हें भी ये निर्णय कर लेना चाहिए हम खाएंगे तो कृष्ण प्रचार तो यहाँ पितृमान कह रहे हैं मन वाणी और देह द्वारा भगवान की सेवा करो और जो तुम्हारे का परिश्रम का परिणाम है उसे भी भगवान की सेवा में उपयोग करो जैसे चैतन्य गीता में आप पढ़ते हो एक भक्त थे उनका नाम था खोदाविजय श्रीधर खोदाविजय श्रीधर भौतिक दृष्टि से बहुत नीच थे छोटा सा दाता था केले के पेड़ों का और केले बेचते थे छोटी सी आमदन थी उसका 50% पैसे थे गंगा की सेवा में महाप्रभु अपना प्रकट कर रहे थे उन्होंने 5% भक्तों को निमंत्रण दिया था सबसे पूछा मानव क्या थे और उन्होंने कहा कि श्रीदार को बड़ा सुंदर टेम्पररी मंदिर बना है, प्रवेश करेंगे अगले इतवार को 9 तारीख को।
Hare Krishna! Hare Krishna!